ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त तप्ता कञ्चन चूर्ण राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्याय श्री अद्वैत गदाधर शुभासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जी प्रश्न
हरे कृष्ण बापू जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कल आपने सत्संग के विराम में कहा कोई न कोई कृष्ण से हमारा नाता है तभी हम जुड़े हैं और आपसे भी हमारा नाता जुड़ गया और हम यहाँ आए कोई न कोई नाता होगा। अभी तक कई लोग भगवान की शरण में नहीं हैं देवी देवता या अन्य की शरण में तो उनका नाता कैसे जुड़े उनके लिए क्या करना चाहिए या कैसे उनका मतलब क्या नाता है ही नहीं है नाता तो
कोई भी जीव चाहे पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो या देवता हो ममेव अंश जीवलोकम ये सारे के सारे इस लोक में जितने जीव है वो सब के सब कृष्ण के अंश। तो इस हिसाब से सबका ही कृष्ण से नाता है चाहे कोई कृष्ण को माने तब भी जो कृष्ण को ना माने तब भी। ऐसे कई बच्चे हैं जो घर से भाग जाते हैं और अपने पिता को कहते हैं आज से तुम मेरे पिता नहीं हो तो उसके न कहने से जो उसका डीएनए है वो थोड़ी बदलने वाला है तो वही रहेगा। ऐसे जो कहते हैं कृष्ण हमारा कुछ भी नहीं है जबकि हम इनको मानते उनको मानते उनको मानते तो किसी को भी मानने से किसी की भी आराधना किसी की भी प्रार्थना किसी की भी उपासना करने से उनका कृष्ण से रिश्ता थोड़ी बदलने वाला है। जैसे कृष्ण को छोड़ के किसी अन्य देवता की कोई पूजा करता है तो पूजा करता है लेकिन अंश तो फिर भी वो कृष्ण का ही है। अब दो चीजें हैं बहुत अच्छा प्रश्न है श्रीमद् भागवत में जो कहता हूं शास्त्रों के आधार पे कहता हूं। देखिए व्यासासन से नीचे उतर के तो फिर मैं क्या कहता हूं वो मैं आपसे मस्ती भी कर सकता हूं मजाक भी कर सकता हूं विनोद भी कर सकता हूं लेकिन जब व्यासासन पे हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे बात करता हूं। और वो बात यह है कि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया अभी आप समझ जाओगे कि देवी देवता मनुष्य को बहुत बहुत जन्मों के बाद पवित्र करते हैं तीर्थ यात्रा भी बहुत बहुत समय के बाद किसी को पवित्र करते हैं। लेकिन बताओ क्या है भागवत का श्लोक लेकिन कोई महापुरुष मिल जाए तो उसी क्षण उसको पवित्र कर देता है ये भागवत का श्लोक ये भागवत का श्लोक। तो आना एक दिन सबको ही कृष्ण के पास आना एक दिन सबको ही कृष्ण की शरण में आना ही है क्योंकि दूसरी कोई मंजिल ही नहीं है। जिस तरह से नदी सीधी चले तो भी सागर में जाएगी और इधर उधर भटक के चले तब भी वो सागर में जाने वाली, लेकिन जो सीधी जाती है वो शीघ्र चली जाएगी और जो भटक के जाती है वो पता नहीं कहां कहां से निकल के जाती है। इसी तरह से हमारे पुराण कहते हैं पद्म पुराण में लिखा है कि जब कोई मनुष्य 100 साल कितने 100 साल वर्णाश्रम में रहता है भली भांति, तब उसको देवताओं की भक्ति में सिद्धि प्राप्त होती है। देखो भक्ति करना और उस भक्ति की पूर्णता को बांधना दोनों अलग चीज है। जैसे बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं देवी देवताओं की, लेकिन कुछ समय के साथ उसके बाद छोड़ देते हैं, जिसका नाम है उद्यापन कर देना। जैसे एक पर्टिकुलर देवी देवता का कोई व्रत रखते हैं, व्रत की एक अवधि होती है, उसके बाद वो क्या कर देते हैं उद्यापन कर देते हैं, और उद्यापन के बाद वो नहीं करते, समाप्त कर देते हैं। फिर देखते हैं कि अब मेरा ये काम फंसा है या ये काम मेरा हो नहीं रहा, तो ये काम का एक्सपर्ट कौन सा देवता है। जैसे एक उदाहरण दूं, आंख खराब हो गई है तो किसके पास जाएंगे, आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब आंख ठीक हो गई तो आंख के पास नहीं जाएंगे। फिर घुटना खराब हुआ तो फिर देखेंगे ऑर्थो कौन है, है ना। ऐसे ऐसे ही एक विशेष काम था, कोई समस्या थी, उसके लिए सोचा कौन है, अच्छा ये है, जैसे बताया गया शास्त्र, उसकी पूजा की, उसके यहां मंदिर गए, जब जैसे कहा कि इस पे पनौती चढ़ गई है। मुझे तो आज तक समझ नहीं है पनौती कौन है कहां मिलती है, और कई बार मिली भी होगी तो मैं पहचान नहीं पाया हूं। तो भाई कहां जाओ, शनि देव के पास जाओ। अब कोई कहते हैं इस पे साढ़े सती मतलब 7.5 साल की पनौती है। अब 7.5 साल तो वो शनिदेव की अच्छी पूजा करके तेल, लेकिन जैसे ही 7.5 साल हो गए उसकी क्या कर दी, उद्यापन कर दिया और फिर खत्म हो गया मामला। फिर किसी और समस्या आया तो फिर किसी और देवता की पूजा कर दी। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा। फिर कुछ लोग हैं ग्रहों की पूजा करते हैं, जैसे उनके हाथ में एक अंगूठी होती जिसमें छोटे छोटे डायमंड होते सारे ग्रहों के। तो ये भक्ति तो कर लेते हैं लेकिन उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म में रहा 100 साल, उसके बाद देवताओं की पूजा में प्रगति की, जब देवताओं की पूजा में प्रगति की तो फिर उसको मां भवानी की पूजा मिलती है। वो आगे गए, ये प्रोटोकॉल है शास्त्र बताता। जब वो मां भवानी की पूजा में गया, क्योंकि याद रखना 84 लाख जोनि में से 4 लाख मनुष्य की है, और जब कृष्ण कहते बहुनाम जन्मनाम, तो ये बहुनाम जन्मनाम में उसने क्या किया कि अंत में उसे कृष्ण भक्ति मिली। भाई कहते हैं बोलो ईश्वर को बहुनाम जन्म, बहुत बहुत जन्मों के अंत में। तो जो बहुत बहुत जन्म हुए वो जाहिर बात है पशु के तो नहीं हुए, मनुष्य के ही हुए। तो उन मनुष्यों के जन्मों में उसने ऐसा क्या किया कि उसके अंत में उसे ज्ञान हुआ और ज्ञान होके कृष्ण शरण ली। तो ये हुआ, समझो। आज बहुत रहस्य बता रहा हूं। अब मां भवानी की पूजा में प्रगति हुई, और जब माँ भवानी की पूजा में सिद्धि प्राप्त हुई कम से कम 3 जन्मों की, कितने, तब माँ भवानी ने कृपा की और उसको आगे बढ़ाया और पहुंच गए भगवान शिव पर। जय शंकर, जय शंकर। अब शंकर भोले बाबा के पास गए और जब भोले बाबा की विशेष कृपा हुई तब मिली कृष्ण भक्ति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाओ पुराण पढ़ लो, पढ़ लो पुराण, मैं घर की बात तो कह रहा हूं। और इसके मेरे पास उदाहरण भी है, जैसे भक्त नरसिंह मेहता, काठियावाड़ गुजरात का प्रसिद्ध एक सत्य घटना है, और वो घटना गुजरात के काठियावाड़ सौराष्ट्र के बच्चे बच्चे को पता है। आज भी गांव में वो लोग कथा गाई जा रही है। भक्त नरसिंह मेहता को जब किसी कारणवश घर से निकाल दिया गया, तब वो जंगल में चले गए और एक शिवाला था वहां पर, उन्होंने चूंकि वो बचपन से ही कृष्ण भक्त थे और राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद ऐसे बचते रहते थे, और उसने भगवान शंकर के मंदिर की बहुत अच्छी सफाई की, बहुत अच्छी सेवा की। तब भोले बाबा तो आशुतोष प्रकट हुए, बोला क्या चाहिए नरसिंह? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो फिर भी मांग ले, भोले बाबा ने कहा देखो मैं आया हूं तो दिए बिना तो कुछ, जो दे वो ही देवता है, जो देना जानता वो देवता है, लेने वाला इंसान है, देने वाला तो जो दे वही तो देवता है, देने वाला ही देवता है। इसलिए आप लोग भी थोड़े थोड़े देवता बनो और देना सीखो, सिर्फ लेना ही नहीं देना सीखो। कंचन दिया करण ने, द्रौपदी ने दिया चीर, जो दिया वही पा गया, सत सत कहे कबीर। देने वाले बनो, देने वाले बनो, जो देना जानता है वो देवता है। लोग देवताओं के पास क्या लेने जाते हैं? लेने ही तो कुछ जाते हैं, देना सीखो। कुछ नहीं दे सकते हो, लोगों को दुआएं दो, नहीं दे सकते लोगों को दुआएं तो दुआएं। आजकल पहले हमारे जो बड़े होते थे ना, मुझे याद है मेरे बचपन में बड़े लोग हैं ना, बच्चों को दुआएं देते थे। जैसे हिंदी में बोलो जीते रहो खुश रहो, तो भोले बाबा ने कहा देखो मैं देव हूं महादेव, मुझे देना आता है। तो बोला फिर जो आपको पसंद हो। तो क्या दिया पता है? भक्त नरसिंह को महाराष्ट्र में प्रवेश करवाया भोले बाबा ने, ये एक लंबी कथा। तो क्या दिया? कृष्ण दिया। ये है शिव। तो लेकिन ये प्रोसेस क्या है? बहुनाम जन्म नाम अंत, ये है एक प्रोटोकॉल, लेकिन एक शॉर्टकट है। जैसे हम किसी मंदिर में जाएं दर्शन करने तो लंबी लाइन, घंटों 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 लंबी लाइन, लेकिन कोई जानने वाला वहां का निकल आए सज्जन, बोले बोला चलो मैं करवा देता हूं, तो जो 12 घंटे 15 घंटे में होता हो सकता है 15 मिनट में करवा दे आप। तो ये है एक प्रोटोकॉल, बहुनाम जन्म नाम अंत में जब कृष्ण के पास गए, इतने वर्णाश्रम, इतने देवी देवता, फिर माँ भवानी और अंत में भगवान शिव, और फिर जाके शिव की कृपा से कृष्ण भक्ति मिलेगी। और हुआ भी अपने राधा वल्लभ, जय राधा वल्लभ। वृंदावन में ये सत्य घटना है कि जो शिव के भक्त थे मथुरा में, एक परिवार सदियों से भगवान शिव की आराधना करते थे, और एक बार शिव ऐसे प्रसन्न हुए और बोला क्या चाहिए, बोला आपको जो अच्छा लगे दे दो। तो उन्होंने अपने हृदय से ये राधा वल्लभ की विग्रह प्रकट की, ये राधा वल्लभ लाल ये शिव के प्रिय है, शिव ने दिए। इसलिए कभी शिव के दर्शन करने जाओ तो शिव को प्रणाम करने से पहले बोल देना जय राधा वल्लभ, वो खुश होंगे। शिव के सामने जाके बोलो जय राधा वल्लभ, बड़े खुश होंगे, क्योंकि उन्हीं ने तो दिए, उन्हीं के तो प्राण है, उन्हीं की हृदय से निकले। जाओ वृंदावन में पूछ लो, हम ये बात ऐसे तो नहीं बोल रहे। फिर शिव की कृपा से, लेकिन बहुनाम जन्मनाम अंते बहुत जम, लेकिन अगर इसी जन्म में सतगुरु बन जाए तो ये प्रोटोकॉल किस जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी जन्म में सतगुरु की कृपा से हमें कृष्ण भक्ति बिना प्रोटोकॉल के मिल सकती है। ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक है ना, चैतन्य चरितमृत ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, कौन भाग्यवान जीव, बाकी तो सब किस में जा रहे, उस प्रोटोकॉल में जा रहे। ये 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 एक प्रोटोकॉल है, इसलिए ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, कौन भाग्यवान जीव, क्या गुरु कृष्ण प्रसादे पायो इसी जन्म में, आपको प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में। ये भागवत का शुरू इसी जन्म में, इसलिए आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण मेरे ठाकुर ने भगवत गीता में सबके नाम लिए, देव देवताओं के नाम लिए, गंधर्वों के भी नाम लिए, ऋषि मुनियों के भी नाम लिए, भूत प्रेत के भी नाम लिए, पितरों के भी नाम लिए, और बता दिया ऐसा ऐसा करोगे तो ये होने। अगर रिकमेंडेशन की है कि किसी के पास जाओ तो एकमात्र वो गुरु महाराज है, कभी नहीं कहा इस देवता के पास जाओ उस देव, वहां तो कहा अगर गए भी हो तो वापस आ जाओ, है कि नहीं, अगर गए भी हो तो सर्वधर्मान प्रत्यय आ जाओ वापस, क्या करो माम एकम शरण बजाओ। लेकिन एक के पास जाने के रिकमेंडेशन की है, और वो कौन है, वो गुरु महाराज है, तद्विदी प्रणिपाते ने, जाओ वहां जाओ, और जाके क्या करो परिप्रश्न सेविया, जाके सेवा करो, और यहां तक कि किसी देवी देवताओं की भी सेवा के लिए कृष्ण ने देखा, सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। तो यदि गुरु कृपा हो तो ये जन्म भी हमारा आखिरी हो सकता है, यदि गुरु कृपा हो। इसीलिए सबका रिश्ता तो कृष्ण से है, लेकिन मुसीबत यह है कि वो रिश्ता, चूंकि हम इस संसार में आए, आते ही संसार का आकर्षण ऐसा था कि वो रिश्ता हम भूल गए। जैसे एक दिन, बहुत समय की बात है, दादा श्री साधु वासवानी जी लंदन जा रहे थे। हमारे साधु वासवानी मिशन के मेरे बहुत मित्र हैं, वो लोग आपस में मिलते हैं तो ऐसे बोलते थे दादा श्याम, क्या बोलते हैं दादा श्याम, हम बोलते हैं राधा श्याम, वो लोग बोलते हैं दादा श्याम, श्याम तो भाई। तो वो जब लंदन जा रहे थे तो कोई उनका सेवक था, उन्होंने कहा यदि आप लंदन जा रहे हो तो हमारा बेटा वहां लंदन में पढ़ने गया है। उस जमाने में कोई ऐसी पत्र व्यवहार, फोन, ऐसी मोबाइल व्हाट्सएप ईमेल कुछ था नहीं, इसलिए किसी की जानकारी लेना कठिन था। तो कई समय से हमारा बेटा लंदन पढ़ने गया, लेकिन कुछ अथक पता नहीं। अगर आप लंदन जा ही रहे हो तो कहीं हो तो पता लग जाएगा। आप साधु वासवानी जी को ये बात याद रही है, जब वो लंदन पहुंचे तो उन्होंने अपने वहां के सेवकों से पूछा कि ऐसे ऐसे है। तो क्योंकि साधु वासवानी मिशन 90% सिंधी समाज में ही, तो एक दूसरे को सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा ये लड़का है फलानी फलानी जगह होता है। तो साधु वासवानी जी महाराज स्वयं गए, वो एक शराब खाने में बैठा था, एक क्लब में बैठा था और नशे में बैठा हुआ था। संत कहीं भी जाए लेकिन जाते हैं जीवों के उद्धार के लिए, चाहे फिर वो शराब खाना ही क्लब ही क्यों ना हो, लेकिन वो जाते हैं उद्धार के लिए। इसलिए वहां जाकर भी वो मुक्त होते, जैसे पुलिस जेल में जाती है लेकिन वो कैदी नहीं होते, जेल में होकर भी। वहां उस लड़के को देखा तो वो लड़का नशे में बैठा था। तब उन्होंने उस लड़के को कहा कि तुझे पता है तेरे माँ बाप ने यहाँ किस लिए भेजा है, क्यों भेजा है, और तू किस नशे में सारा भूल गया वो लक्ष्य, तुझे तेरे माँ बाप ने किस लिए भेजा है। तब वो लड़का कितना शर्मिंदा हुआ। ऐसे ही हम तो यहाँ कर दुनिया के नशे में सब भूल गए थे, जिस काम को आए थे वो काम भूल गए, ये तो बड़ी भूल हुई, कृष्ण नाम भूल गए जिस काम के लिए यहां आए थे, और खो गए। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल, ऐसे खो गए। और खो कर जो कभी हमारे थे ही नहीं वो हमारे अपने हो गए, और उन अपनों को अपनाते 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 एक दिन हम पराए हो गए और शमशान में जाके फेंक दिया गया, जला दिया गया। और उस राख को भी अपनाया किसी ने नहीं गंगा जी में, वो भी नसीब वाले हो तो परवान कर दिया। तब ऐसे में जैसे साधु वासवानी जी महाराज एक महापुरुष, ऐसे कोई महापुरुष हमारे जीवन में आए और हमें बताए कि जीव जागो जीव जागो जीव जागो। गौर चंद्र बोले कोटि निंद्रा जाओ माया पिशाची जी बोले अरे तुम कहाँ हो गए हो, तुम हो कौन, तुम्हें पता है कौन हो? तो बोले मुन्ने की माँ हूं। कौन हो तुम? चिंटू की पत्नी हूं। कौन हो? रूबीना का पति हूं। कौन हो तुम? मैं इसका ये अरे जीव, तुम कृष्ण के अंश हो, अपना वास्तविक स्वरूप चोरी समझते हो। मैं इसका हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं इसका हूं, लेकिन जिसके तुम हो उसको भूल गए हो। तब गुरु के पास वो भूली दास्ता है लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्ता लो फिर याद आ गई। गुरु कृपा से उस दास्तान को भूल चुके थे, फिर से वो याद दिलाते हैं। तो अब है तो सभी कृष्ण के अंश, लेकिन कुछ को याद रह गया और कुछ को भूल गया। अब जिनको भूल गया उनके लिए आदेश है, यारे देखो प्यारे कहो कृष्ण उपदेश, जाओ। महाप्रभु कहते हैं सब जीवों को जाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। क्या कर रहे हैं? इनको भूले भटकों को वापस लाने के लिए, जाओ तुम्हें मैं भेज रहा हूं। आई समझ, इससे कृष्ण से तो सबका रिश्ता है, लेकिन कुछ भूल को है, कुछ को याद है, क्यों याद है कि उनको याद दिलाया गया, सिंपली बात है। इसलिए जब तक ऐसा कोई महापुरुष हमारे जीवन में आ नहीं जाएगा, जैसे हम भटके हुए एक राही थे, क्या बोला, दुनिया की अंधेरी राहों में, हम भटके हुए एक राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में, जीने का सहारा हमको मिला मसीहा तेरी बाहों में, हमें जिंदगी मिली, मसीहा मतलब डॉक्टर, जीवन देने वाला, जब तुमने उठाया हमें, हमें एक रास्ता मिल गया। इसलिए वास्तविक हमारा जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन हमारे गुरु महाराज से पहली मुलाकात होती है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जी कोई और?
हरे कृष्ण बापूजी, ये जो आप जो दीक्षा लेते हैं बापूजी, आप उनको बोलते हैं कि आप 16 माला कीजिए, ये 16 माला का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? मैं केवल 10 करता हूँ तो बापूजी इनका फल नहीं मिलेगा?
मिलेगा 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 मिलेगा, फल तो उसका भी मिलेगा जिसने एक बार बोला कृष्ण। आप तो 10 माला करते, फल तो उसका मिलेगा, क्योंकि गीता में कहते स्वलपम यस्य धर्मस्य तरायते महाभयात। मेरा ठाकुर कह रहा है कि थोड़ा भी इस मार्ग में चला वो महाभय से तर जाएगा, महाभय नरक में जाने का होता, कम से कम वो नरक में नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। जिसने मेरे हरि का नाम लिया कम से कम नरक में नहीं जाएगा, इतना याद रख लेना। जहां भी जाएगा ऐसी जगह जाएगा जहां उसकी उन्नति होती चली जाएगी, लेकिन उसकी डिमोल्यूशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमोशन और डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन। ये भागवत कह रहा है और फिर गीता कहती है। इसलिए आप 10 वाला करो आपका भला होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन देखो हरेक कॉलेज की एक कट ऑफ लिस्ट होती है एडमिशन के लिए। कोई कॉलेज ऐसे होते हैं जहां 60 पे भी एडमिशन मिल जाता है, और कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहां 90 पे भी नहीं मिलता है। मेरे को नहीं मिला 95 पे, 199 कट ऑफ लिस्ट होते, क्या करोगे? ऐसे हमारी परंपरा में दीक्षा का मापदंड मिनिमम जो रखा है वो कट ऑफ लिस्ट 16 माला है। अब आप बोलोगे 16 ही क्यों, 17 क्यों नहीं, और 16 ही क्यों, 15 क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि महामंत्र में 16 अक्षर है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 अक्षर। और हमारे ठाकुर भी 16 कला है, और हमारे बड़े, मैंने अपने बचपन में बात की कि बात 16 ना सच बोल, अब तो कोई बोलता ही नहीं, उस जमाने बोलते ही बात 16 ना, तो वहां भी 16 सच के लिए 16 का आंकड़ा, ऐसे बोला 12 ना सच है, तो 16 ना सत्य की बात के लिए भी बिल्कुल 16 ना, वहां भी 16, ठाकुर की कला भी 16, और माला के मंत्र भी महामंत्र के 16। इसलिए 16 का आंकड़ा हमारे आचार्यों ने चुना कि भाई अगर मुझसे दीक्षा लेनी है, मुझसे, किसी और से ले लो तो 2 माला पर भी ले लो, उनका अपना मापदंड है, लेकिन अगर हमसे दीक्षा लेनी है हमारे गुरुदेव और हमारे परम दो गुरुदेव ने कहा तो उन्होंने क्या कहा, 16 आपको माला जपनी है। अब यदि हमें सोना चाहिए तो सोना इस समय कितना है, 75। अब अगर आपको सोना चाहिए 24 कैरेट ने, 24 कैरेट सोना चाहिए तो आप गए महालक्ष्मी ज्वेलर, तो आपको अगर 24 कैरेट चाहिए तो आपको 75 देने पड़ेंगे। अगर आप कहोगे थोड़ा कम करो तो बोलेंगे फिर 18 कैरेट ले लो। लेकिन अगर हमसे सोना लेना है हॉलमार्क वाला तो वही 75 है। अब आप पे डिपेंड है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, और अगर वाकई आपको सोना ही चाहिए उसी शॉप से चाहिए तो फिर 75 खर्च करो, नहीं तो फिर ऐसी बहुत सारी शॉप जहां आपको हो सकता है 68 में भी मिल जाए 18 कैरेट 14 कैरेट। इसी तरह से अगर इस व्यासासन इस परंपरा से किसी को दीक्षा लेनी तो 16 पे आना पड़ेगा, नहीं तो 10 भी करोगे तो भला तो हो ही गा। मैं तो कहता हूं एक बार बोलो हरे कृष्णा, लो आपका भला तो हो ही गया, भला तो हो ही गया। लेकिन जो हमारा प्रोटोकॉल है गुरु परंपरा का, उसमें हमारे आचार्यों ने दीक्षा के लिए 16 का आंकड़ा क्या रखा, फिक्स किया है। अब आपकी मर्जी, अगर दीक्षा चाहिए और इसी व्यास से इसी परंपरा से तो 16 पे पूछो। ये तो प्यार की बात है, जिससे हमें प्यार होता है ऐसे कहते आई वॉन्ट दिस ऑन एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए, आई विल पे। अगर आपको इस व्यास पे आसन से चाहिए आप बोलो यस हम 16 देंगे, क्यों नहीं देंगे, अब आपकी मर्जी, नहीं तो 10 वाले भी, लेकिन 10 फिर बस से हम क्या करें, ठीक है। नित्य हरिओम, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल नित्याय गौर, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।